साचार शुद्ध जलधि प्रतीर शुद्धो चरण निरतानां आचार्याणां पदयुग कमलानि दधे शिरसि मेहम। संस्कृत पंचगुरु भक्ति का काव्य है। इसमें लिखा आचारांग सूत्र कृतांग स्थानांग समवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्री धर्म कथा उपासक अध्ययन अंतकृत दशांग अनुत्तर उपपादिक दशांग फिर विपाक सूत्र प्रश्न व्याकरण दृष्टिवाद ऐसे 12 समुद्रों को जिन्होंने तैर लिया। क्या समझे कि 12 अंगों के नाम थे तो इन 12 अंगों को 12 समुद्र कह रहे हैं। तो इन 12 समुद्रों को जो तैर चुके हैं और शुद्धोर चरण निरतानां जो शुद्ध और उत्तम आचरण में निरत है तल्लीन है उन आचार्यों के पदयुग कमलानी चरण युगल रूपी कमलों को अहम मैं मे शिरसि दधे मेरे सिर पर धारण करता हूँ। क्या सुंदर बात है। मैं मेरे सिर पर उन आचार्यों के चरण कमल युगलों को धारण करता हूँ जो 12 समुद्रों के पारगामी हैं जो शुद्ध उत्तम आचरण में निरत है तल्लीन है तन्मय है उनके चरणों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। देखिए ये अपन जब चौके में आहार दान करते हैं जो श्रावक लोग तो पाद प्रक्षालन करते हैं और पाद प्रक्षालन करके पादोदयम पवित्रम सिरम्मिकादोण अच्छणम कुज्जल वसुनंदी श्रावकाचार्य में गाथा आती है कि उस पवित्र पादोदक को चरणों के जल को सिरम में कादूण सिर पर करते हैं सिर पर लगाते हैं फिर अर्चना को जाओ उसके बाद अर्चना करने योग्य है। तो उसका अर्थ यही हुआ कि मैं उनके चरणों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके चरण आचरण से पवित्र हैं और 2 चरण होने से व्यवहार और निश्चय दोनों नए उसमें समावेश को प्राप्त है और उसकी जो रज है वो रज चूंकि गंधोदक में आई है इसलिए ठीक है उनके चरणों को पकड़ के मैं अपने सिर पर नहीं रख सकता लेकिन चरण रज को बड़ी भक्ति के साथ मस्तक पर धारण कर सकता हूँ। ये भावना होती है। नवोपचार विधि जो है उसको आप औपचारिक मत समझ लो उसका नाम नवोपचार विधि है। आजकल तो लोग पता नहीं कुछ समय से कुछ लगभग कितने वर्ष हो चुके होंगे उसको नवदा भक्ति बोलने लग गए हैं लोग पर शास्त्रों में उसको नव पवित्र क्रिया नव उपचार नवोपचार विधि और उसको नव पुण्य भी कहा है। नवदा भक्ति शब्द यहाँ जैन शास्त्रों में हमें देखने नहीं मिला अभी कहीं हो तो अच्छी बात है। अनुवाद वगैरह में तो मिल जाएंगे क्योंकि अनुवाद तो आजकल के पंडित लोग करते हैं तो वो बात अलग है लेकिन हाँ एक स्थान पर सुधर्म श्रावकाचार में ये लिखा है कि मुनियों की, आर्यिकाओं की और क्षुल्लकों की, तीनों की नवधा भक्ति करनी चाहिए। इस पर ऐसी चर्चा निकली थी एक बार ओमचा में, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी का संघ था, तो पंडित सुमेर चंद दिवाकर जी ने लिखा था उसमें अपने चरित्र चक्रवर्ती में कि क्षुल्लकों के पैर, उन्होंने पाद प्रक्षालन को लेकर के कुछ लिखा था, उस गंधोदक को सिर पर लगाना नहीं लगाना उसके ऊपर कोई उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी। तो फिर हमने आचार्य श्री के, उन्हीं के आशीर्वाद से आचार्य शांति सागर महाराज श्री के दीक्षा शताब्दी महोत्सव पर अनेक ग्रंथों का विमोचन हुआ था, तो उन ग्रंथों में ये श्रावकाचार था। तो हमने आचार्य श्री को ये श्लोक उनके सामने रख करके कहा कि आचार्य श्री देखिए इसमें क्या लिखा है और ये लिखने वाले कौन है। आचार्य शांति सागर महाराज श्री के संघस्थ साधु हैं, वो लिख रहे हैं कि तीनों की नवोपचार विधि होती है। तो फिर अपन किसको स्वीकार करें, हमने ये शब्द का प्रयोग किया था, उनके अंतेवासी लिख रहे हैं, अंतेवासी यानी समीप निवास करने वाले। तो क्या होता है कि एक ही महापुरुष को लेकर के कितनी सारी धाराएं लोग निकाल लेते हैं अपने अपने स्वार्थवश या फिर अपने अपने परिस्थितिवश या मनस्थितिवश। तो फिर आचार्य ने उस श्लोक को पढ़ा, उसका अर्थ भी पढ़ा, तो उसमें तो एकदम श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ था कि मुनि, आर्यिका और क्षुल्लक तीनों के लिए ये विधि उन्होंने लिखी थी। और ये उन्होंने लिखी हो आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य ने, ऐसा नहीं है। कोई कहे कि पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहाँ लिखा है, हमें प्रमाण दो। अरे प्रमाण ढेर सारे हैं, प्रमाण देने के बाद आप मान्य करोगे क्या, पहले शपथ लो, तो फिर प्रमाण अब भी उपलब्ध है। आपको अगर मान्य नहीं करना तो फिर प्रमाण लेकर और यहाँ से हमारे द्वारा हम अगर देना भी चाहें तो देकर क्या लाभ होगा, जब आपको मानना ही नहीं है। तो फिर ठीक है, आप जैसे हो खुश रहो, आपको आपका ज्ञान और आपकी विधियाँ मुबारक, और क्या कह सकते हैं। इस जितने शाखा उपशाखाएं बनी है अभी जैन संप्रदाय में, वो केवल कुछ आग्रहों को लेकर के बनी हुई है। आप मूल आगम को देखो, एक आचार्य शांति सागर महाराज जी का चित्र था, क्या था, दो तीन गुरुजनों के मुख से आचार्य शांति सागर महाराज श्री के प्रति कुछ ऐसे नकारात्मक शब्द निकले थे कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री तपस्वी तो थे लेकिन शास्त्रों का स्वाध्याय विशेष नहीं था उनका, ऐसी बात उन्होंने पुणे में कही। तो फिर कई लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, श्रोताओं को, कि इतने बड़े गुरु के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और इसी तरह गुजरात में किसी ने कह दिया था कि उनका कोई ऐसा गहन अध्ययन तो था नहीं, तपस्वी थे, कठोर चर्या वाले थे, पर जब उनके स्वाध्याय को लेकर के ऐसे उंगलियां उठाई लोगों ने तो उसका प्रत्युत्तर क्या था। क्योंकि देखो बोलने में देर नहीं लगती, सिर्फ जीभ हिलानी पड़ती है और यहाँ से गले से वायु बाहर आती है, लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स है उससे गुजर करके वो शब्दावली बाहर निकल आती है। एक कवि बिहारीलाल जी या विरधी चंद जी, नहीं बिहारीलाल जी, उन्होंने छिंदवाड़ा में एक कविता लिखी थी। कविता ये थी, उठाई जीव तलवा पे मार दई रे, पूरा एक गीत था, उठाई जीव तलवा पे मार दई रे। तो इसलिए किसी भी बड़े व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना आवश्यक है। बाद में सोचने से कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि हमने एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू रीड एंड राइट गुड इंग्लिश। उसमें प्रारंभ में कुछ ऐसे पत्र दिए थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा के, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गलत स्थान पर कॉमा लगने से विश्व में कितने युद्ध हुए हैं। यानी लिखने वाले ने गलत नहीं लिखा था, कॉमा गलत डल गया था तो देशों के बीच युद्ध हो गया। तो आचार्य शांति सागर महाराष्ट्र का एक ऐसा चित्र था, अभी तो नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं फिर बाद में देख लेंगे। उसमें ये पंक्तियां हमने लिखी थी, ये थोड़ी अलग, एक अलग संस्करण है उस उन्हीं पंक्तियों का। दोनों आग जलाती, आगम की कर्म को, आग्रह की धर्म को। आग तो आग है, आगम वहां भी आग है, आग्रह वहां भी आग है, दोनों आग जलाती है। आगम की आग कर्म को जलाती है, आग्रह की आग धर्म को जलाती है। और आचार्य शांति सागर महाराज श्री के जो निकट संपर्क में रहे हुए जो लोग हैं, उनसे जब अपन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर भी दो माताओं ने कुंथलगिरी में उनके दर्शन किए, एक अभी तो दोनों उपस्थित नहीं दिख रही हैं, वो 11 वर्ष की थी और एक 7 वर्ष की थी। तो उन्होंने दर्शन किए थे आचार्य शांति सागर महाराज जी के, और उन्होंने कुछ नियम भी लिए थे। तो वो अभी आज सौभाग्य से आपके सोलापुर में हैं दोनों माता, और काफ़ी दिन तक वहाँ पीछे बैठ करके सुनती थी वो व्याख्यानों को। हाँ जी, हाँ, उनका नाम, शुभ नाम आप लोग बता रहे हैं, मयूरा बहन शाह, और एक दूसरी अम्मा दादी जी भी थी, हाँ उन्हीं के साथ में थी, दोनों ने वहाँ दर्शन किए हुए हैं। उनसे सुनो आप आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में, ये कोई भी कुछ भी बोले तो उस पर भरोसा नहीं करना, वो अपने स्वार्थवश लोग कुछ भी कर डालते हैं। राजनीति में कितने नाटक होते हैं देखो ना, कोई भी मुद्दा मिल जाए, कितना भी सीरियस, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो, लेकिन उस पर वो लोग अपने तुष्टिकरण नीति को लगा देते हैं। देश हित, समाज हित, ये सब एक तरफ रह जाता है। इसी तरह यहाँ धर्म में भी वो स्थिति बन गई है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने संगत साधुओं को 1 सितंबर 1989 में संकल्पित कराया था कि कोई भी साधु न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ेगा, अखबार। आप सोचोगे क्या कारण रहा होगा, कारण यह है कि उसको पढ़ने से बुद्धि कलुषित होती है। अगर बुद्धि कलुषित नहीं होती तो गुरु उस वस्तु का त्याग कैसे कराते। वो पॉलिटिक्स करना सीख जाते हैं लोग उन सब समाचारों को पढ़कर सुन करके, तो यहाँ पॉलिटिक्स का काम ही नहीं है। रशिया के किसी फिलोसोफर ने एक बात कही थी cleverness may be a virtue of दरबारी शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राज दरबार का जो मंत्री सामंत वगैरह जो होते हैं, किंग्समैन बोलेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि चतुराई दरबारी का गुण है, बट फिर परंतु लगाया उसने, और परंतु इतना खतरनाक शब्द है कि आपने अगर 10 पेज भी अगर लिखे हो किसी की भलाई में या किसी की प्रशंसा में, उसके बाद अगर आप एक परंतु लिख दो तो पूरा पानी फिर जाता है। तो उसने ये लिखा है कि चतुराई दरबारी का गुण है, साधु का दोष। साधु में भोलापन होना जरूरी है, चतुराई नहीं। तो वो ऐसी चीज है अखबार कि उससे ये सब उल्टी चीजें सीख जाते हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर अगर वो सीख गए चतुराई तो प्रयोग करने का भी मन होगा। जिसके पास बंदूक होती है उसके अंदर चलाने की इच्छा भी हो सकती है। आचार्य अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। न भवति जातु हिंसा पर्व में एक मिनट, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर्वस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। आचार्य कहते हैं कि पर पदार्थ से आत्मा को हिंसा का सूक्ष्म दोष भी नहीं लगता, तो भी ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए जिससे हिंसा की जाती है। क्यों? भावों की निर्मलता के लिए। अगर आपके पास ऐसी वस्तुएं रहेंगी तो आपके भाव कभी भी बिगड़ सकते हैं। देखो गृहस्थ जीवन में कई बार सातवीं प्रतिमा तक युद्ध में जा सकते हैं, पता है आपको? सात प्रतिमाधारी युद्ध कर सकते हैं जैन आगम के अनुसार। शांतिनाथ भगवान अणुव्रती थे जब उन्होंने दिग्विजय की थी, कुंथुनाथ भगवान अणुव्रती थे, अरनाथ भगवान अणुव्रती थे, तीनों चक्रवर्ती थे और तीनों ने दिग्विजय की थी, 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी। सारे राजा नतमस्तक नहीं हो गए थे उनको तीर्थंकर मान करके, कईयों से युद्ध लड़ना पड़ा था। फिर नेमिनाथ भगवान ने युद्ध किया, हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है। पार्श्वनाथ भगवान ने युद्ध किया, पाशनाह चरयू में लिखा हुआ है। और भरत चक्रवर्ती ने युद्ध किया, महापुराण में लिखा हुआ है। तो ये अणुव्रती थे सारे के सारे, कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि नहीं थी इनमें। भरत चक्रवर्ती अणुव्रती थे फिर भी युद्ध किया। तो 7 प्रतिमा तक युद्ध शक्य है, लेकिन वो युद्ध ऐसा होगा कि या तो नियोग रूप होगा, जैसे चक्रवर्ती हैं उनको तो वो करना ही होती है दिग्विजय, या फिर किसी आक्रांता का प्रतिरोध करने के लिए अटैक्स आर मैनीफोल्ड। आक्रमण के कई भेद होते हैं, बट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, 2 श्रेणियों में उनका विभाजन किया जा सकता है। अटैक फॉर ऑफेंस, अटैक फॉर डिफेंस। यानी आप अटैक कर रहे हो, कोई ऐसा प्रसंग नहीं है लेकिन आप अटैक कर रहे हो। और दूसरा अटैक वो है कि डिफेंस के लिए आप अटैक कर रहे हो, कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आप सुरक्षा के लिए कर रहे हो। तो दोनों के अलग अलग अधिनियम हैं न्याय व्यवस्था में। क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, एमएससी में पढ़ाते हैं वहाँ पर सागर यूनिवर्सिटी में, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का जो फर्स्ट लेसन, उसमें लिखा है कि दो लोग गोली चलाते हैं, दो को गोलियां लगती हैं, दोनों वहाँ न्यायालय में उपस्थित होते हैं, फिर जो मुजरिम के कटघरे में खड़े करते हैं दोनों को, और दोनों से प्रश्नोत्तर करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, तो वहाँ पर प्रश्नोत्तर करते हैं। तो उसमें ये बात सामने आती है जज के कि एक फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन रेंज में कोई आदमी अतिक्रमण करके अंदर आ गया था तो उसको गोली लग गई थी। तो उसको कहते हैं कि इसको दवाई का खर्चा पानी दे दो और तुम्हें रिहा किया जाता है, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी, ये सामने आ गया, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे को देखो, दोनों की गोलियां दो लोगों को घायल कर चुकी थी, एक को यहां कंधे पर लगी थी, दूसरे को भी कंधे पर लगी थी। पर क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो प्रश्न पूछने वाले उसको इमोशनल करते हैं, और इमोशनल करके मतलब उसको भावुक बना देते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उसके मुंह से वो सच उगलवाते हैं, तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है। एक मुजरिम को वो बोलते हैं कि मेरी गोली, मेरा निशाना चूक गया, बोले नहीं तो फिर मैंने कंधे पर निशान नहीं लगाया था। तो फिर उसको सेक्शन 302 और वो सब होता है ना, तो उसके तहत तो उसको बड़ी भारी सजा मिलती। तो देखो, द्रव्य से वो घटना एक जैसी है लेकिन भावों में अंतर होने के कारण दंड एक नहीं है। इसी तरह जैन शासन में भी हिंसा और अहिंसा का विभाग है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ में 27 उदाहरण दिए उन्होंने, कुछ ऐसे उदाहरण दिए कि जिसको तुम हिंसा नहीं समझ रहे हो वो हिंसा है, और जिसको तुम हिंसा समझ रहे हो वो हिंसा नहीं है, ऐसे उदाहरण दिए उन्होंने। बच्चा व्यसनियों की संगति में चला जाता है और पिताजी को खबर हो जाती है कि अच्छा ये गलत संगति में पढ़कर गलत काम सीख रहा है। माँ कहती है कि अरे बच्चा ही तो है, उसको बचाने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर जो उदाहरण दिया है उसमें ये है कि अगर पिता उस बच्चे को क्षमा करता है तो हिंसक है, दंडित करता है तो अहिंसक। कुछ समझ में आ रहा है? या आपने सिर्फ इतनी अहिंसा सीखी है कि चींटियों को बचा के चलो, इंसान का कुछ भी होता रहे। तो जैनिज्म की जो हिंसा और अहिंसा है उसको बारीकी से समझना जरूरी है, इतनी सुगम नहीं है। तो आचार्य परमेष्ठी के वर्णन में अभी अपन ने ये समझा कि वो चरण रज सिर पर धारण की जाती है, और चरण रज की बात निकली तो फिर तीनों पात्रों की चरण रज होती है, मुनिराज की भी होती है, आर्यिका की भी होती है, और 11 प्रतिमाधारियों की भी होती है। और ऐसा सिर्फ आचार्य शांति सागर महाराज जी के उन शिष्य ने नहीं लिखा, बल्कि पूर्वाचार्यों ने भी लिखा है। और वो पूर्वाचार्य कौन थे? तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की 360वीं गाथा में स्वामी कुमार कार्तिकेय आचार्य महाराज लिखते हैं, तिविहे पत्तम मिसया सद्धाई गुणे ही संजुदो नाणी दानम जो देवी स्वयं नव दान विही ही संजुत्तो। मूल गाथा में टीका तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं, सीधी गाथा है। क्या लिखा है कि जो तीन प्रकार के पात्रों के लिए हमेशा सात गुणों से संयुक्त होकर श्रद्धा आदि सात गुण बताए हैं दातार के, उन सात गुणों से संयुक्त होकर स्वयं दान देता है, नौकर चाकरों से दान नहीं करवाता, स्वयं दान देता है, और नव दान विही संयुक्तो, नव दान विधियों से संयुक्त होकर दान देता है, वह आते ही संविभाग व्रति होती है, वो व्रति होता है, उसके पास चौथा शिक्षा व्रत होता है। अब क्या करोगे? तीन पात्र लिखे हैं उसमें, तिवि है पत्तम में, त्रिविध पात्र में दान देता है, और त्रिविध पात्रों में कैसे दान देता है? नवदान विधि, नवदान विधियों से। तो कैसे दुआ इस गाथा से कि तीनों पात्रों की ये नवोपचार विधि होती है, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, अर्चना, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और एषणा शुद्धि, ये नवोपचार विधि है, तीनों पात्रों की लिखी उन्होंने। तो अब प्रश्न आता है कि तीनों पात्रों में जगन्य पात्र तो अविरत सम्यक दृष्टि है, मध्यम पात्र प्रतिमाधारी है, और उत्तम पात्र 28 मूल गुणों के धारी है। तो अविरत सम्यक दृष्टि की नवोपचार विधि कैसे होगी? तो इसका समाधान है, कौन से व्रत की बात चल रही है बोलो? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, चौथा शिक्षा व्रत है ना, क्या नाम था उसका? अतिथि संविभाग। तो अतिथि शब्द अपने आप में आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि यदि ये तीन पात्र अतिथि की मुद्रा में हो तो आपको नवोपचार विधि करनी होगी, पर अगर अतिथि की मुद्रा में नहीं है, शर्ट पैंट वगैरह पहने हुए या फिर कोई और दूसरी वेशभूषा, गृहस्थों की वेशभूषा धारण किए हुए हैं, तो फिर उनकी प्रदक्षिणा कैसे लगाओगे आप? उनके चरणों का गंधक सिर पर, गंधोदक सिर पर कैसे लोगे? जो शूज पहनते हैं उनके पाद प्रक्षालन का गंधोदक आप माथे पर कैसे लगाओगे? प्रश्न तो आएगा ना। तो वहां पर सभी अविरत सम्यक दृष्टियों की चर्चा नहीं है, सभी 11 प्रतिमाधारियों, सभी प्रतिमाधारियों की चर्चा नहीं है। वहां पर यह है कि जो अतिथि की मुद्रा में है उनकी नवोपचार विधि। क्या होता है कि मुद्रा है लेकिन कभी कभी भाव उस मुद्रा से कुछ नीचे भी आते हैं, जैसे 11 प्रतिमाधारी हैं, कभी भावों में वो 10 प्रतिमाधारी भी हो सकते हैं, कभी अविरत सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। धवल ग्रंथ में लिखा है कि मुनि महाराज 28 मूल गुणधारी है लेकिन अंदर से 14 गुणस्थान चल रहा है, अविरत सम्यक दृष्टि। तो ऐसे भेद हो जाएंगे तो उनकी नवोपचार विधि से ही आहारचर्या होगी। तो आचार्य परमेष्ठी के विषय में ये उनके चरण रज मस्तक पर धारण करने की बात की। जैनम जयतु शास्त्र शास्त्र पठन में।